जीवन एक गोरख धंधा है। ऑडिबल की विशेष प्रस्तुति ओम स्वामी के विचार, ओम स्वामी की आवाज में। आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर हो ये जरूरी तो नहीं। नींद तो दर्द के बिस्तर पर भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। शेख करता है जो मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। सबकी नजर में हो साकी ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं।
जीवन वास्तव में ही एक गोरख धंधा है, समझना मुमकिन नहीं, जीना मुमकिन है। तो इस श्रृंखला के जो हैं छह प्रकरण, छह कड़ियां पहले से हो चुकी हैं। सबसे पहले में हमने विचार किया कि कैसे भगवान बुद्ध ने 12 निदान बताए, अर्थात द्वादश कारण, जिसके कारण मनुष्य निरंतर बार बार सतत पुनर्जन्म उसका होता है, और अविद्या से शुरू होकर कैसे वो मृत्यु की अवस्था तक पहुंचता है। फिर हमने विचार किया दूसरे प्रकरण में कि भिन्नता का नाम ही जीवन है। अपने जीवन से ऐसी कल्पना करना कि हमेशा बाहर की परिस्थिति एक सी रहे, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं, क्योंकि नित्य प्रति जीवन जो है एक नई चीज लेकर प्रस्तुत होगा। जिस दिन आपको लगेगा कि जीवन को मैं समझ गया, उसी दिन उसी घंटे में कुछ ऐसा होगा कि आप हिल जाओगे। तीसरे प्रकरण में हमने बोला कि हमारे जीवन में जो जो घटित होता है, यह आवश्यक नहीं कि हम उसके लिए उत्तरदायी हैं, परंतु ये आवश्यक जरूर है कि हम उसको कैसे लेते हैं, उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। तो हमने विचार किया कि जीवन में जो जो घटित होता है, जरूरी नहीं कि उसके लिए हम उत्तरदायी हों। कई बार मनुष्य किसी दूसरे के कर्म क्षेत्र में चला जाता है, जिससे उसको दूसरे के कर्मों का भोग भी करना पड़ जाता है, परंतु जो हमारे साथ हो रहा है उसको हम कैसे धारण करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, वो पूर्णतः हमारे ऊपर निर्भर है, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं। चौथे प्रकरण में हमने जाना कि मनुष्य का जीवन इच्छाओं का घर होता है। जब तक इच्छाएं हैं तब तक द्वंद चलता रहेगा। क्या इसका अर्थ यह है कि इच्छाएं बुरी हो गई? बुरी या अच्छी वो आपको तय करना है, पर हर इच्छा की पूर्ति पर मनुष्य को सुख मिलता है, और यदि वो पूर्ण ना हो तो दुख मिलता है। इससे नहीं भाग सकते। वो जो वैराग्य है कि इच्छा की पूर्ति पर बहुत सुख ना हो और इच्छा की अनापूर्ति पर बहुत दुख ना हो, ये वैराग्य ही अध्यात्म पथ पर उन्नति का लक्षण होता है। जैसे जो शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, कामयाब वही होते हैं जो वैराग्य से उसमें लगा सकते हैं। जिसको अपने शेयर से प्रेम हो जाए वो उसको बेचेगा नहीं, बेचेगा नहीं तो कोई मुनाफा नहीं। उसमें इतना वैराग्य होना चाहिए कि नीचे गिर रहा है, मैंने किस लिए खरीदा था ये, मैंने केवल और केवल इसको लाभ के लिए खरीदा था। अब ये लाभ देने के लायक नहीं है, इसलिए मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, या इसने लाभ दे दिया है और मैं लालच ना करूं, इससे बाहर चला जाऊं। ये वैराग्य सुंदर बात है कि संभव है, ऐसा वैराग्य मनुष्य अपने जीवन में ला सकता है यदि कार्यरत रहे तो। पांचवें प्रकरण में हमने जाना कि मनुष्य का जीवन केवल इच्छाओं का घर नहीं है, मनुष्य का जीवन दुखों का भी घर है। और जिस प्रकार एक पक्षी घोंसले से उड़कर कितनी ही बाहर चला जाए, कितना ही सुख क्यों ना ले ले, वापिस उसको अपने घोंसले में ही आना है शाम को। और जब वो वापिस आएगा तो वैसा ही एक वातावरण पाएगा। इसी को ऋषियों ने, मुनियों ने या बुद्ध ने संसार की संज्ञा दे दी कि यही इसका सार है। निरंतर एक द्वंद्व चलता रहेगा। फिर हमने जाना कि दुख से निकलने की युक्ति क्या है। उसमें हमने विचार किया कि सरल व्यवहार, सरल जीवन और चरित्र का बल मनुष्य के, ये तीन ऐसे आधार हैं जिस पर यदि आप विराजमान हो तो आप कूटस्थ हो जाते हो, स्थित हो जाते हो और स्थित प्रज्ञ हो जाते हो। यदि आपको स्वयं पर ही भरोसा नहीं तो कोई भी आप पर कैसे भरोसा करे। बुद्ध की ही बात चलते हुए इस प्रकरण में मैं आपसे कुछ चीजें साझा करना चाहता था जो कि सातवां प्रकरण है इस श्रृंखला का, कि बुद्ध ने चार सत्य बताए जिनको कि चार आर्य सत्य बोला गया या चार महान सत्य। पहला, जीवन दुख है, संसार जो है दुख है, ये एक आर्य सत्य है, महान सत्य है, कोई इसका विपरीत नहीं ढूंढ सकता। अर्थात दुख की परिभाषा उन्होंने दी कि इस संसार में अकेलापन, विषाद, नकारात्मकता और कष्ट, रोग, क्लेश, इतना ही नहीं, जो इस संसार में मनुष्य को सुख प्राप्त होंगे वो क्षणिक होंगे, बुद्ध ने कहा, इसलिए ये दुख है। दूसरा सत्य, इसका कारण है, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया समुदय, कि अकारण नहीं है ये दुख, दुख जो ये है किसी कारण से है। कारण उन्होंने बताया इच्छा और आसक्ति, और बारह निदानों में एक शब्द का हमने प्रयोग किया था उपादान, अर्थात किसी चीज को पकड़ लेना, इतना मोह हो जाना। संसार दुख है, दुख का कारण है। तीसरा, इसका निरोध संभव है, इस दुख को रोका जा सकता है। शास्त्र ने कहा यदि कारण को रोक देंगे तो जो कारण से फल मिल रहा है वो स्वतः ही रुक जाएगा। यदि मैं इतना ज्ञान रख लूं मन में कि सब सुख मेरे स्थायी नहीं रह सकते, तो मन को अपार एक शांति की प्रतीति होती है। चौथा, उन्होंने कहा पहला संसार दुख है, दूसरा समुदाय दुख का कारण है, तीसरा निरोध दुख का रोधन संभव है, और चौथा इसका एक मार्ग है। उनके अनुसार और हमारे शास्त्रों के अनुसार निर्वाण ही इस दुख का निवारण कर सकता है। निर्वाण अर्थात वो लौ जो बुझ गई है। अब इच्छा की अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। यथा दीपो नेंगते उपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य। भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार दीपक की लौ हिलती नहीं, ऐसी जगह पर जहां वायु रहित वातावरण हो, जैसे दीपक की लौ बुझती नहीं ऐसी जगह पर, हिलती नहीं जहां वायु ना हो, ठीक उसी प्रकार इच्छा रहित वातावरण में मनुष्य का मन विचलित नहीं होता। पिछले प्रकरण में हमने युक्ति बताई थी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मनुष्य दुख में ना जाए। सरल व्यवहार, सरल विचार या जीवन और चरित्र का बल, यदि यह है तो दुख में प्रविष्ट नहीं करेगा। पर तब का किया जाए जब दुख में आ गया है। मान लीजिए तैयारी नहीं हुई, परीक्षा सर पर आ पड़ी, उस समय क्या किया जाए? कौन सी एमबीडी से पर्ची निकाल के अपने पेपर में जाकर बैठोगे? उस समय कोई तो युक्ति होगी ना। तो इस प्रकरण में, इस कड़ी में मेरा विचार है, मैं वही युक्ति आपसे साझा करूं कि क्या किया जाए जब हम दुख में आ चुके हैं। एक कर्मचारी था, एक कंपनी में काम करता था, कभी जीवन में लेट नहीं हुआ था, 15 वर्ष उसको काम करते हो गए थे। घर से दुखी भी था इसलिए कभी उसने छुट्टी भी नहीं ली थी, काम में ज्यादा बढ़िया था। एक दिन बेचारा लेट हो जाता है, काम पर जाता है, उसको बॉस पूछता है, अरे तुम लेट क्यों हो गए? देखता उसके पट्टी हो रखी है, कहीं थोड़ा लाल दिख रही है पट्टी, कहीं थोड़ा पीली दिख रही है, हल्दी लगाई हुई थी बेचारे ने, कहीं थोड़ा रक्त था। उसने कहा, श्रीमान मैं नाश्ता करने के बाद जरा खिड़की से बाहर देख रहा था और तीसरी मंजिल पे था, गिर गया नीचे। उसने कहा, अरे झूठ बोलते हो, गिरने में क्या 1 घंटा लगता है? तुरंत गिरे और आके काम पर आ जाओ। गिरने में कभी समय नहीं लगता। क्रोध की जब आंधी आती है, काम का जब वेग उत्पन्न होता है मनुष्य में, जब अहंकार जागृत होता है, जब मनुष्य का पतन होता है किसी भी भावना से, उसमें समय नहीं लगता और ना ही वो दुखदाई होता है। गिरते हुए व्यक्ति दुखी नहीं है, जब गिर जाता है फिर चोट लगती है। आप मान लीजिए 50वीं मंजिल से छलांग लगाने कर कीजिएगा मत, छलांग लगा दे रास्ते में तो एक ऐसे एक भावना जागृत होगी कि पता नहीं कहां जा रहा हूं। जब आप चीख रहे होगे तो ये ना पता होगा कि खुशी से चीख रहे हैं या दुख से। रोलर कोस्टर में चीखते हैं लोग, देखा होगा आपने। पर जब गिरोगे फिर हो सकता है उठाने के लिए खुरचन लानी पड़े, हो सकता है ना। तो दुख सारा गिरने में नहीं है, गिरने के बाद होता है। किसी भी कर्म का प्रभाव कर्म करते हुए नहीं मिलता, कर्म के बाद मिलता है। तो यदि दुख आ गया है, मान लीजिए आप उदास हैं, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या मन में क्रुद्ध हैं किसी बात को लेकर, रोष है किसी बात का, उस समय क्या किया जाए? पहली बात, जितनी श्रेष्ठ तैयारी पहले होगी सरलता की, उतनी कम संभावना होगी इस दुख के आने की। पर यदि आ गया है तो उसका एक ही मूल मंत्र है, एक तो है ज्ञान, उसमें कुछ करना नहीं है, उसमें तो समझ है एक कि ये दुख आएगा, कुछ समय के लिए है, चला जाएगा। परंतु उससे भी बढ़कर है वो कर्म जो दुखी हृदय को करना चाहिए और जो कि है सृजनात्मक कर्म। जब जब आप कुछ सृजनात्मक करेंगे, आप अपने आप सकारात्मक हो जाएंगे। जब आप कुछ बनाने के लिए अपने मन को, अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को, अपने चित्त को, अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को, अपनी भावना को, अपने ज्ञान को कुछ बनाने में लगा देंगे, तो ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं, क्लेश की, द्वेष की, राग की, घृणा की, ये तोड़ने के लिए बनी है। जब आपका ध्यान बनाने की ओर चलेगा, तो तोड़ने वाला दुख अपने आप बहुत लघु हो जाएगा। पानी में एक चम्मच नमक डाल दिया जाए, एक गिलास पानी में, तो बहुत नमकीन होगा, पी नहीं सकते उसको, स्वादिष्ट नहीं होगा। नमक उतना ही है, एक ही चम्मच है, कम नहीं कर सकते। जीवन में घंटे 24 हैं प्रतिदिन में, उसमें बहुत सारे चिंतन में ही बीतेंगे, चिंता में ही बीतेंगे। कुछ लम्हे, कुछ दिन दुख में ही बीतेंगे, विषाद में ही बीतेंगे, परंतु उस समय पानी को तो बढ़ा सकते हैं। एक गिलास ना लेकर एक बड़े बर्तन, एक पतीला पानी हो सकता है। तो उससे नमक का जो नमकीन होना है वो कम हो जाएगा। जिनसे हम इंग्लिश पढ़ते थे बचपन में, उनके बारे में हमने अपने संस्मरण में लिखा है, प्रोफेसर शर्मा, वो एक बड़ी सुंदर बात बोलते थे। बोलते थे, बेटा कभी भी खर्चे कम करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि ये रोना के चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, जिंदगी बहुत महंगी हो गई, ये बेकार का रोना है। हमारे धरना देने से, हमारे रोने धोने से ये तो है नहीं जो तेल की कीमत सस्ती हो जाएगी या देसी घी सस्ता हो जाएगा, सब चीज प्रतिदिन और महंगी होगी। तो इस पर कभी चिंतन मत करना कि मैं खर्चा कैसे कम करूं। अपनी सारी ऊर्जा इस पर लगाना कि मैं कमाई को कैसे बढ़ाऊं। जो कमाई को बढ़ाएगा उसका खर्चा अपने आप कम हो जाएगा। जो बनाने में अपनी ऊर्जा लगाएगा, तोड़ने वाली भावनाएं अपने आप लघु हो जाएंगी, अपने आप जो है छोटी हो जाएंगी। यह भी एक आदत की बात होती है कि खुश रहना है या दुखी रहना है। आपको अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोग मिले होंगे जो कम साधन रखते हैं परंतु फिर भी खुश रहते हैं, और ऐसे भी हैं जिनके पास पर्याप्त है सब कुछ परंतु फिर भी जब भी आपको फोन करते हैं कुछ दुख ही बताना है। वो पूर्णतः आपके हाथ में। तो पहली बात है कि जब दुख आ जाए उस समय अपने ज्ञान के बाण को निकालकर उसका भेदन करना होता है। वो ज्ञान किस काम का जो उस समय निकाला जब सब अच्छा है? कब तक हवा में तीरंदाजी करनी है ना? जब दुख आ जाए कुछ ना कुछ तैयारी पहले से होनी चाहिए। जीवन में कुछ तो ऐसा हो जिसमें आपका जो ऊर्जा है कुछ सृजनात्मक कर्म में लग रही है। दूसरा है अपना ध्यान बटाना आना चाहिए। सबसे भारी भूल जो मनुष्य कर सकता है दुख के पलों में वो ये होती है कि अपने मन की सब बात को सच्ची मान ले। उस समय मन ऐसी ऐसी वाक्य आपके सामने प्रस्तुत करेगा कि आपको लगेगा वाक्य में ही मुझसे दीन हीन कोई है नहीं इस दुनिया में, क्योंकि मन दुखी है और दुखी मन की बात कभी नहीं सुननी चाहिए और सुखी मन की बात भी कभी नहीं सुननी चाहिए। कहा था, एक दंपति एक संत के पास जाते हैं, नया नया विवाह हुआ होता है। उनका, महाराज कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हम सुख से रह सकें, दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम से रह सकें। तो गुरु ने कहा, देखो कभी क्रुद्ध हो तो उस समय कटु वचन मत बोलना। क्रोध में चुप कर जाना, दूर हो जाना, समय मांग लेना, उस समय मत आघात करना, वो व्यक्ति भूल नहीं पाता। जब बहुत दुखी हो तो उस समय आघात नहीं करना, और जब बहुत खुश हो, उसने कहा, तो कोई वायदा मत करना। खुश जब होता है मनुष्य तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बाद में जब वास्तविकता सामने आती है तो देखता है, अरे इतने पैसे निकालूंगा कहां से। दशरथ ने तो भी एक वादा ही किया था कैकेयी को, युद्ध में बचा लिया, उनका दो वचन बाद में लूंगी, वो ज्यादा समझदार थी। तो दुख में आघात मत करना और सुख में किसी को वचन मत देना, दोनों ही समय में थोड़ा सा मनुष्य को एक अंतराल प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। उस प्रतीक्षा के बाद जो निर्णय ले वो एक समता का निर्णय होगा। तो जब मन दुखी हो उस समय परम आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति अपनी अच्छाई की ओर देख सके। जीवन में जो अच्छा घटित हो रहा है उसकी ओर देख सके, कहीं ऐसी दृष्टि, ऐसी जगह दृष्टि लगा सके जहां से उसको सुख की प्राप्ति हो, जहां से एक सृजनात्मक ऊर्जा आए, एक सकारात्मक ऊर्जा आए। नहीं तो संभव नहीं दुख से निकलना। एक छोटा बच्चा था, एक छोटा बच्चा था, एक स्कूल में एक नाटक होना था जिसके लिए कि वो सब बच्चों को चुन रहे थे। तो इस बच्चे का नाम था माधव, और उसने भी बहुत तैयारी की कि मैं भी उसमें कोई किरदार निभाऊंगा। घर आता है जिस दिन नियुक्ति होनी होती है, सब बच्चों को चुनना होता है, तो माँ घर पर प्रतीक्षा कर रही होती है, क्योंकि हर माँ की एक ही इच्छा होती है, मेरी बेटी या बेटा, मेरी संतान हमेशा जीते, बस कोई हारे तो हारे, मेरी संतान की जीत होनी चाहिए। तो माँ ने बोला कि तुम्हें चुना बेटा माधव? हाँ माँ चुना। क्या मुख्य किरदार निभा रहे हो? नहीं। तो क्या उसके साथ होगे? नहीं। तो वो सारे बता देता है, तो कोई भी किरदार उसका होता नहीं। माँ कहती है, अरे मेरे बेटे को चुना नहीं, किस काम के लिए चुना है तुम्हें? तो बच्चे तो भोले होते हैं, जब उनको कुछ नहीं चाहिए होता तब, जब चाहिए होता है तो बहुत चतुर हो सकते हैं। तो उसने कहा माधव ने कि माँ मुझे चुना गया है कि मैं श्रोतागणों में बैठकर तालियां लगाऊंगा, वो भी देखने का एक नजरिया है। क्या फर्क पड़ता है कि आप उस मंच पर नहीं रहे, नीचे उतर गए। और ये जो संस्कार है ये तब देना होता है जब मन ठीक है, फिर ये संस्कार जो है काम आएगा जब मन नहीं ठीक। यदि सरदर्द हो रहा है मनुष्य को, पहले से दवा लेकर रखी हुई है तो उस समय ले सकता है, यदि दवा ही नहीं है पास में, पहले तो फटे सर से जाएगा, वैसे ही खिजा खिजा, दुखी क्रोधी, फिर दवा लेगा, फिर घर आएगा, खाएगा, आधे पौने घंटे के बाद होगी, तब तक ना जाने किसको क्या क्या बोल चुका होगा वो। सरलता से दुख में नहीं जाएगा, दुख में आ गया है तो मन को ऐसे कर्म में लगा देना चाहिए कि जिससे कुछ बन रहा हो। दो सहेलियां आपस में बात कर रही होती हैं, मैंने कहीं पढ़ा था, लिखा भी था अपने ब्लॉग पर, तो एक ने पूछा दूसरी से कि जब तुम दुखी होती हो अपने पति से क्या करती हो। उसने कहा देखो मैं तो उसका क्रेडिट कार्ड उठा के चली जाती हूँ घर के बाहर, वो अपने आप पीछे से कॉल करता रहता है, व्याकुल होता रहता है, मैं नहीं आती 6-7 घंटे घर, और निर्भर करता है कितनी बड़ी लड़ाई हुई है, हो सकता है मैं 2-3 दिन ना घर आऊं, हो सकता है मैं अपनी माँ के पास चले जाऊं 10 दिन ना घर आऊं, पर कार्ड उसके मेरे पास रहते हैं और टीवी का रिमोट भी मैं साथ में ले जाती हूँ, पीछे से उसने जो करना करता रहे। तुम क्या करती हो, उसने पूछा अपनी सहेली से। मैं तो देखो सफाई करती हूं, मुझे उसी से सुख मिलता है। अरे उससे तो उसका लाभ हो रहा है, सहेली ने कहा। तुम सफाई कर रही हो उससे तो उसका फायदा हो रहा है। एक ऐसी अद्भुत भावना होती है दुख की, दुख में मनुष्य अपना भी नुकसान करता है और दूसरे का भी। राग में द्वेष में हो सकता है अपना लाभ करे दूसरे का नुकसान करे, परंतु जब मन विषादग्रस्त होता है तो मनुष्य अपना भी नुकसान करता है, अपने आप को भी क्षति पहुंचाता है और दूसरे को भी। तो उसने पूछा, उसने कहा अरे तुम सफाई करती हो उससे तो उसको फायदा हो रहा है, ऐसी कौन सी कैसे सफाई। मैं तो वॉशरूम साफ कर देती हूँ, उसने कहा, बाथरूम जो है उसको साफ करती हूँ, तुम्हारे जैसी मैंने कोई देखी नहीं, तुम तो बड़ी सती सावित्री निकली। ऐसा कुछ नहीं है, बोले उसके टूथब्रश से करती हूँ साफ। उसके टूथब्रश से साफ करके मैं वापस वहाँ पर रख देती हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अगले दिन वो अपने दांत जो है इसी से साफ कर रहा है, यही मुंह खोल के उसने मुझे क्रोध में बोला था अब कर ले साफ। पर मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करती और किसी प्रकार से क्रोध नहीं करती। एक बड़ा सरल सा नियम है जीवन का, आपको यदि मीठा चाहिए तो जो भी बना रहे हैं उसमें मीठा डालना होगा ना, उसमें गुड़ ही डालेंगे, चीनी ही डालेंगे, कुछ मीठा ही डालेंगे, तो ही वो पदार्थ जो है, तो ही वो व्यंजन मीठा होगा। यदि मैं किसी व्यंजन को मीठा होने की आकांक्षा रखता हूं उससे और उसमें नमक डालूंगा तो क्या वो मीठा हो सकता है? नहीं। परंतु शायद आपको मालूम होगा मीठे पदार्थ में एक चुटकी नमक डाल दो तो वो और मीठा हो जाता है, वो जो नमक होता है मीठे को फैला देता है, मुख में जब वो जाता है तो जीवा सोचती है नमकीन है या मीठा, और मीठे का स्वाद और बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा दुख तो जरूर चाहिए, जिसके जीवन में दुख ही ना रहे उसके जीवन में केवल एक ही चीज बच जाएगी, दुख। जिसके जीवन में कोई चुनौती ना रहे, कोई समस्या ना रहे जिसका समाधान करना निकालना हो, कोई कार्यरत रहने के लिए कोई प्रयोजन ना रहे, वो सबसे अधिक दुखी होगा मनुष्य। इसीलिए कुछ कुछ करते रहना चाहिए। एक बड़ा धनी व्यक्ति था, उसने अपनी सालगिरह पर सोचा मैं अपनी पत्नी का एक चित्र बनवाकर दूंगा। तो एक बहुत श्रेष्ठ चित्रकार को वो बोलता है कि मेरी पत्नी के बिठा कर क्या तुम उसका एक पोर्ट्रेट, एक चित्र बना दोगे? उसने कहा बना दूंगा, 20,000 रुपया लगेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है 3 दिन के लिए प्रतिदिन उनको आना होगा, ये से ये समय मैं बैठकर बना दूंगा। चित्र जो है वो बना देता है, पत्नी ने अभी देखा नहीं, वो जो धनाढ्य व्यक्ति है उस चित्र को देखता है, कहता है अरे ये तो मेरी बीवी की तस्वीर लग ही नहीं रही, ये क्या बनाया तुमने, तो बिल्कुल सुंदर नहीं दिख रही इस चित्र में। उसने कहा महोदय देखिए, अगर आपको सेब बनवाना था तो मुझे नाशपाती क्यों देना, जो आपने मेरे सामने लाके रखा मैंने उसका चित्र बना दिया। संघर्ष जो है मूर्खता का, एक मूढ़ व्यक्ति का संघर्ष, एक अज्ञानी का संघर्ष यही होता है। नमक डाल रहा है और मीठे की आकांक्षा रखता है, नाशपाती रख के सेब के चित्र की इच्छा रखता है। यह संभव नहीं। जो जो भी जीवन में आपको चाहिए वैसा वैसा कर्म जो है करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, उसके बिना संभव नहीं। तो जो आपको जीवन से प्राप्त हो रहा है यदि वो रुचिकर नहीं है, उस समय अपने आप को बैठकर मन में यही गणना बुनना है कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो क्या उचित है, जो मैं कर रहा हूं क्या वो मुझे इस पथ पर लेकर जा रहा है आगे, या मेरा कर्म जो है वो मेरी इच्छा के विरोध में है। तो जैसा हमको फल चाहिए हमारा कर्म वैसा होना बहुत आवश्यक है। और मन में जो व्यक्ति एक फकीर की प्रकृति रख ले वो दुखी बहुत कम होगा, कम से कम अपने दुख से दुखी नहीं होगा, और यह स्वयं में एक बहुत बड़ी बात है। लिखा है ऐ जाने वाले तुम्हारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा, हम खिजाओं से निभा कर लेंगे तू बहारों को साथ लेता जा, कोई भी वक्त हो हंसकर गुजार लेता हूं खिजाओं के दौर में अहदे बहार लेता हूं, गुलों से रंग सितारों से रोशनी लेकर जमाले यार का नक्शा उतार लेता हूं। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं इनमें कुछ साहिबे असरार नजर आते हैं, तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं। मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप तो फूलों के खरीदार नजर आते हैं, हश्र में कौन गवाही मेरी देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं। आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पर भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। शेख करता है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं, उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, सबकी नजरों में हो साकी ये जरूरी तो है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं, हैरत की एक दुनिया हो तुम एक गोरख धंधा हो। इस प्रकरण में इतना ही।